समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर शुरू करते हैं आज का आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में एक बार हम फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ में हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना अरकल। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 29th ऑफ जनवरी। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। Election Commission has issued notice to Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal in connection with the complaints filed by BJP and Congress over his allegations of poisoning Yamuna River during an interview. The commission has asked Mr. Kejriwal to furnish his response on the complaints with evidentiary support by 8 p.m. today. The commission also said that it perused the report of Delhi Jal Board, which does not mention about any poisoning in Yamuna. The poll panel said that as regards the allegations of poisoning, it is expected that there must be a factual foundation. The commission noted that such allegations have serious ramifications of creating enmity between the regional groups and residents of the neighbouring states, threat of a law and order situation due to actual or perceived shortage or non-availability of water during this time of the year.
गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन ब्रीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
समारोह की शुरुआत प्रतिष्ठित कदम कदम बढ़ाए जा धुन से होगी। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि और सियाचिन जैसी मनमोहक धुनें बजाई जाएंगी। सीएपीएफ बैंड, विजय भारत, राजस्थान ट्रूप्स, ए वतन तेरे लिए और भारत के जवान जैसी धुन का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना का बैंड, गैलेक्सी राइडर, स्ट्राइड रूबरू और मिलेनियम फ्लाइट फैंटेसी जैसी धुनों का प्रदर्शन करेगी। वहीं भारतीय नौसेना बैंड द्वारा राष्ट्रीय प्रथम, निशंक, निष्पद, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता का प्रकाश फैलाओ, रिदम ऑफ द रीफ और जय भारती धुन बजाएगा। इसके बाद भारतीय सेना के बैंड में वीर सपूत, ताकत वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव और फौलाद का जिगर जैसी धुन होंगी। विगुल वादकों द्वारा बजाए जाने वाले सदाबहार गीत सारे जहां से अच्छा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। रईसुद्दीन के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ISRO has successfully launched the NVS-02, the second generation navigation satellite from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh at 6:23 hours using the GSLV F-15 rocket. The NVS-02 satellite was successfully placed in the geostationary transfer orbit. Five second generation NAVIC satellites, NVS-01, 02, 03, 04, 05, are envisaged to augment NAVIC base layer constellation with enhanced features for ensuring continuity of services. This launch marks a remarkable milestone for ISRO, commemorating the 100th launch from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Navigation with Indian constellation NAVIC is India's independent regional navigation satellite system, designed to provide accurate position, velocity and timing (PVT) service to users in India as well as to region extending about 1,500 kilometers beyond Indian landmass.
सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट अधिवेशन शुक्रवार से शुरू होगा। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी।
India has rejected a Canadian report claiming alleged activities related to purported interference in Canada. The Ministry of External Affairs dismissed the allegations, asserting that it is in fact Canada that has been consistently interfering in India's internal affairs. The MEA further pointed out that such interference has also created an environment for illegal migration and organized criminal activities. Rejecting the report's insinuations about India, the MEA said that the support system enabling illegal migration will not be further countenanced.
प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को संपन्न हुआ था। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। 13 अखाड़ों में से प्रत्येक को स्नान के लिए निर्दिष्ट समय और क्रम दिया गया है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा और शंभु पंचायती अटल अखाड़ा ने आज सवेरे त्रिवेणी संगम में सबसे पहले डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और VIP रहित घोषित किया है। राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। और जानकारी के लिए चलते हैं प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आप बताएं कि आज मौनी अमावस्या के दौरान अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को नजर आ रहा है?
देखिए मुकेश, मौनी अमावस्या को लेकर, अमृत स्नान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हर हर गंगे का नारा लगाते हुए श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड सुबह के समय बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं को जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है कल रात में ही संगम घाट पर पहुंच चुके थे। मेला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने बताया कि लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया था, और अब तक जब से मेला शुरू हुआ है 20 करोड़ से अधिक लोग जो है संगम में स्नान कर चुके हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जो है अखाड़े जो है, जो 13 अखाड़े अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं, और संगम मोज के पास लगभग एक साथ जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के कारण जो है स्नान करने के दौरान हल्की हफरा तफरी मची थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे, लेकिन जो स्थिति नियंत्रण में है और श्रद्धालु जो है अब उत्साह के साथ जो है पवित्र संगम में जो है स्नान कर रहे हैं। जी मुकेश
जी, दीपेंद्र, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशा है, तो इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के क्या प्रबंध किए हैं?
बिल्कुल, मेला प्राधिकरण ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा यहाँ केंद्रीय पुलिस बल के 50,000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। जो संगम घाट है जहाँ पर लोग काफी भीड़ है, वहाँ बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग जो है गहरे पानी में ना जा सके। इसके अलावा जो है वहाँ पर गोताखोर है, NDRF की 20 टीम है जो जगह जगह पे तैनात है। CCTV कैमरे, ड्रोन के माध्यम से जो पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, और पहली बार जो है पानी के नीचे ड्रोन के माध्यम से जो है उसकी हलचल को भी जो है निगरानी किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस जो है जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और संदिग्ध लोगों पर जो है वो नजर रख रही है। जी मुकेश,
धन्यवाद दीपेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
और श्रोताओं, अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो सबसे पहले नीना आप बताएं कि चेन्नई की क्या खबरें आपके पास?
The Ordnance Clothing Factory, OCF, at Avadi in Chennai dispatched the country's first ever export consignment of ordnance clothing to be the Republic of Suriname last evening. Its general manager, Mr. B.S. Reddy, flagged it off from its premises. The consignment has over 4,500 military uniforms worth rupees 1.7 crore, which are being offered by the Ministry of Defence in Suriname under the Defence Diplomacy Fund to strengthen the mutual relationship between the two countries. The OCF at Avadi is a unit of the public sector undertaking called Troops Comfort Limited under Ministry of Defence. It is a leading state-of-the-art defence garment and armouring unit. From its inception in the year 1961, the OCF had supplied several crores of defence uniforms, tents, parachutes, bulletproof jackets and helmets to the defence paramilitary and various state police forces. And Mukesh, now what do we have from Delhi?
दिल्ली से पहले हम मुंबई की बात करेंगे. मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में युगांडा के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया. मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के बाद इन्हें चिकित्सा निरीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. संदिग्धों के पास से 2 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की गई है. इसका मूल्य लगभग 22 करोड़ रुपए है. और महाराष्ट्र के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया. श्री यूपीएस मतदान की सेवानिवृत्ति के बाद 4 सितंबर 2024 से ये पद रिक्त था. श्री वाघमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं.
Moving over to Bengaluru, the Department of Neurological Rehabilitation in NIMHANS Mental Health Hospital of Bengaluru has organized the 53rd Annual Conference of the Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation starting tomorrow on January 29th. The role of the 3-day conference is to explore possibilities of empowering the persons with disabilities and improving their quality of life. According to the 2011 census, over 2.2% of India's population is living with disabilities. In the absence of a recent census and with inclusion of more illnesses causing disabilities in the Rehabilitation of People with Disabilities Act, the number of people living with disability is likely to be much higher. Physical medicine and rehabilitation plays a pivotal role in the process of disability certification. Over 300 delegates of international stature from across the country will share insights on both established and advanced rehabilitation management.
और अब कोलकाता महानगर की खबर. 48वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कल उद्घाटन हुआ. इस मेले का इस वर्ष का मुख्य जो देश है वो जर्मनी है. प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता गिल्ड हर साल पुस्तक मेले का आयोजन करता है. ये पुस्तक मेला 9 फरवरी तक चलेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेले का उद्घाटन किया. इस अवसर पर जर्मन राजदूत भी उपस्थित थे. सरकार ने पुस्तक मेले की अतिरिक्त बस चलाने की व्यवस्था की है और कोलकाता मेट्रो रेल ने भी अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया है.
Mukesh, now we move over to Hyderabad. A contingent comprising 212 players across 23 sports disciplines is taking part in the 38th National Games inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Uttarakhand yesterday. The contingent is led by Vice Chairman and Managing Director of Sports Authority of Telangana, Soni Bala, accompanied by 2 deputies, A. Maheshwar and D. Sanjeev Reddy and others. Telangana flag bearers are international archer T. Chikita and international ace shooter in Deaflympics, Master Dhanush Shrikant. In Telangana, the 8-day-long holy pilgrimage event of Mesram clan Adivasi Gons called Nagoba Jatara has begun at midnight at Keslapur village in Adilabad district. Mesram clan Raj Gons and Pardhans from far and wide, including the erstwhile Adilabad district in the state neighbouring Maharashtra and the vast tribal region in central India, are congregating in Keslapur to celebrate the annual mega holy fete. The mega Jatara, called as the second largest Adivasi tribal fair in the country, will feature a slew of religious activities reinforcing the eternal bond between Adivasis and Mother Nature, rooted in their centuries-old tribal traditions and customs during the fair. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has inaugurated the Experium Park, emphasizing the government's commitment to developing ecotourism, temple tourism, and medical tourism in the state. He highlighted the state's natural and cultural heritage and announced plans to introduce a comprehensive tourism policy soon. Expressing his delight at the launch of the ecotourism park, he said the park is a step towards promoting sustainable tourism. He said the government is not only focusing on IT and pharma development but also on tourism, which has immense potential.
और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के समाचारों की. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल बलवंत राय मेहता विद्या भवन में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के लाला लाजपत राय जयंती समारोह में भाग लिया. उन्होंने लाला लाजपत राय की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए आज़ादी के लिए किए गए उनके संघर्ष का स्मरण किया. श्री सक्सेना ने कहा कि लाला लाजपत राय ने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था. श्री सक्सेना ने कहा कि आज राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उसी जज्बे और ईमानदारी की आवश्यकता है. और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली परिवहन निगम DTC द्वारा चुनाव व्यवस्था में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए 5 फरवरी को मतदान वाले दिन बसों का संचालन सवेरे 4 बजे से किया जाएगा. DTC ने बताया कि इन बसों का संचालन शहर के प्रमुख 35 मार्गों पर किया जाएगा. और नीना देश दुनिया के समाचार हो गए और महानगरों के भी समाचार हो गए और अब बारी है खेल जगत के समाचारों की. तो सबसे पहले बात करते हैं शतरंज की. नीदरलैंड्स की विजगॉन जी में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने बढ़त बना ली है. गुकेश ने कल 9वीं बाजी में लियोन ल्यूक मेंडोनका को पराजित किया. गुकेश 6.5 अंक के साथ शीर्ष पर हैं. उनके प्रतिद्वंदी नोडरबेक अब्दुल सत्तारोव ड्रॉ के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. प्रतियोगिता में आज गुकेश का सामना मैक्स वारमेरडम से होगा. अन्य महत्वपूर्ण मैच में आर प्रज्ञानानंद का सामना रूस के व्लादिमिर फेदोसीव से होगा. और क्रिकेट की बात करें तो भारत इंग्लैंड से तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 26 रन से हार गया है. गुजरात के राजकोट में कल शाम पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 171 रन बनाए. जवाब में भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. इस हार के बावजूद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है. चौथा मैच शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में खेला जाएगा. और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा. बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए ICC का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है. और अब बात कर लेते हैं हॉकी की. तो हॉकी इंडिया लीग की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रितित कपूर.
हॉकी इंडिया लीग के इतिहास में सबसे तेज गोल जेकब एंडरसन ने किया, लेकिन उनका ये प्रयास बेकार गया क्योंकि 28 जनवरी को राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स और टीम गोनासिका के बीच मैच 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ. इसके बाद शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा. मैच की शुरुआत तूफान्स के लिए शानदार रही जब जेकब एंडरसन ने 18वें सेकंड में गोल किया. इसके बाद टिम ब्रांड ने 6 मिनट में और अमनदीप लाकरा ने 25वें मिनट में गोल किया, जिससे तूफान 3-2 की बढ़त बनाने में सफल रहे. लेकिन टीम गोनासिका ने वापसी की. विक्टर शार्लेट ने 12वें मिनट में और 55वें मिनट में 2 गोल किए और अरायजीत सिंह हुंडल ने 24वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-3 कर दिया. पहले क्वार्टर के बाद तूफान 2-1 की बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन गोनासिका के पेनल्टी स्ट्रोक से मैच में वापसी की. दूसरे क्वार्टर में अरायजीत का गोल 2-2 की बराबरी पर लाया. इसके बाद अमनदीप ने तूफान के लिए एक शानदार ड्रैग फ्लिक से तीसरा गोल किया, जिससे स्कोर 3-2 हो गया. तीसरे क्वार्टर में खेल रोमांचक था, लेकिन कोई गोल नहीं हुआ. तूफान ने कई पेनल्टी कॉर्नर जीते, लेकिन गोंजालो पेयट का एक शॉट गोल से बाहर चला गया. आखिरी क्वार्टर में टीम गोनासिका ने दबाव बढ़ाया. अरायजीत का शॉट डिक्सन ने बचाया, लेकिन 55वें मिनट में शार्लेट ने जोरदार ड्रैग फ्लिक से गोल किया और स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां ओलिवर पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बचाव किए और अपनी टीम को जीत दिलाई. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में अब हैदराबाद तूफान्स दूसरे स्थान पर मौजूद है और उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का निर्णय बुधवार के मैचों पर निर्भर करेगा. आकाशवाणी के लिए मैं ऋतिक कपूर.
Farmers' interest in organic farming is increasing rapidly in Madhya Pradesh. The largest area under organic farming in the country, which is 15,92,000 hectares, is also in Madhya Pradesh. According to a report of Union Agriculture Ministry, more than 3,000 clusters have also been formed in Madhya Pradesh under the central government's Traditional Agricultural Development Scheme. A correspondent has filed this report.
द टोटल एरिया ऑफ फार्मिंग इन मध्य प्रदेश इज अराउंड 1.5 करोड़ हेक्टेयर्स। एट द सेम टाइम अबाउट 15 लाख टन्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश एवरी ईयर, इन विच मोर देन 5 लाख टन्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। स्टेट पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रहलाद पटेल इन्फॉर्म दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग एडिशनल असिस्टेंस टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग।
दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी और इसका रकबा बढ़ाने का फैसला भी जो लक्ष्य है वो 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का आज फैसला किया है।
द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन मध्य प्रदेश स्टार्टेड इन द ईयर 2001 व्हेन वन विलेज इन ईच डेवलपमेंट ब्लॉक वाज सिलेक्टेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज मेड इट्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी इन द ईयर 2011। मेनी प्रोविजंस हैव बीन मेड इन इट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। संजीव शर्मा, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और नीना अरकल के साथ। और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो नीना, सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम बता देते हैं। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी धुंध छाई रही और आंशिक बादल भी रहे हैं। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आज सवेरे हल्की सी धुंध रही और अब बाद में जो है आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Weather report from Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist early morning. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is expected to have partly fog, mist in the morning and partly cloudy sky later. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब याद कर लेते हैं इतिहास के पन्ने, हम पलटते हैं और जानते हैं कि आज के इतिहास में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 29 जनवरी की 1780 में जो घटना हुई है वो पहले बताते हैं अपने श्रोताओं को। भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। हिक्की गजट का या बंगाल गजट का जो है कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से कोलकाता से प्रकाशन हुआ था और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे।
In 1931, Gandhiji sails for England as Congress delegate to second roundtable conference. This conference was attended by Madan Mohan Malviya and Sarojini Naidu.
1939 में आज ही के दिन रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी।
In 1953, Indian National Academy of Dance, Drama and Music was inaugurated.
1949 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने इसराइल को मान्यता दी थी जबकि 1979 में भारत की पहली जंबो ट्रेन दो इंजन वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना किया गया था।
In 1976, Parliament approves permanent government and censorship of newspapers at New Delhi.
1992 में आज ही के दिन भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था और 1993 में आज ही के दिन क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की थी।
In 1977, जज मिर्जा हमीदुल्ला बेग बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही हेल्ड दिस ऑफिस टिल 21 फरवरी 1978। In 1979, तमिलनाडु एक्सप्रेस, इंडियाज फर्स्ट जंबो पैसेंजर ट्रेन, वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फॉर मद्रास। एंड इन 1997, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट वाटर इज अ मिनरल।
और 2007 में आज ही के दिन अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी थी। और 2010 में आज ही के दिन भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत उत्पादन किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान की उड़ान का रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर महाराणा प्रताप को। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ था। वे अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की थी। वे हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखने में सदा तल्लीन रहे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष मनाई जाती है और भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा की जाए उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई ऊंच फीट हाथी के मस्तक तक उछल सकता था। कुछ लोक गीतों के अलावा हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे की वीर रस की कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की गई है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था और फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया। जब मुगल सेना महाराणा के पीछे लगी थी तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे नाले को लांघने में सफल हुआ था।
Today is the death anniversary of Robert Frost, who was an American poet known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frequently honored during his lifetime, Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. He became one of United States' rare public literary figures, almost an artistic institution. Frost was awarded the Congressional Gold Medal in 1960, and in 1961 he was named Poet Laureate of Vermont. In his 1939 essay, The Figure a Poem Makes, Frost explains his poetics. No tears in the writer, no tears in the reader, no surprise for the writer, no surprise for the reader. The initial delight for me is a surprise of remembering something I didn't know I knew. Poetry must be a revelation or a series of revelations for the poet and the reader. Here's a recitation of Road Not Taken.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy.
Gopinath Veluthan Nair, popularly known by the stage name Bharat Gopi, was an Indian actor, producer and director, considered one of the greatest actors in the history of Indian cinema. Gopi is one of the first actors to be associated with the new wave cinema movement in Kerala during the 1970s. Bharat Gopi has won many awards, including the National Film Award for Best Actor for his role as Shankarangutti in Kodiyattam, and hence he got the name Bharat. His well-known roles include Ayyappa in Yavanika, Vasu Menon in Pelangal, Professor Shakespeare Krishna Pillai in Kartathya Kilikood. Actor for various roles, he did the lead role of Shankaragutti in Adur Gopalakrishna's next film, Kodiyattam, a performance for which he won the National Award for Best Actor. Here's a Malayalam song, Velayiram Kannumele, from this movie.
और किंगरा सिख समुदाय के भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता बाबा इकबाल सिंह की आज पुण्यतिथि है। वो कलगीधर ट्रस्ट, द कलगीधर सोसाइटी और बारू साहिब के संस्थापक अध्यक्ष थे। शिरोमणि पंथक बाबा इकबाल सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने एक संत का जीवन जिया। उन्होंने विवाह नहीं किया और सिख पंथ की सेवा के लिए कार्य करते रहे। भारत सरकार ने 2022 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
Oprah Winfrey celebrates her birthday today. She is an American media executive, actress, talk show host, television producer and philanthropist. Oprah is best known for her talk show, The Oprah Winfrey Show, broadcast from Chicago, which was the highest rated television program of its kind in history. Dubbed the Queen of All Media, she was the richest African American of the 20th century and North America's first black multi-billionaire, and she has been ranked the greatest black philanthropist in American history. Here's a speech from Oprah.
I always understood that there really was no difference between me and the audience. At times, I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. You're here at this fabulous...
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश कुमार और नीना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।